श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गोवर्धन गिरिधारी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे बाद ये मंत्र आप उच्चारण कीजिए बड़े भक्ति भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका जो कल नहीं थे आज पहली बार आए हैं वह सबका गोवर्धन कृषि वाणिज्य क्षेत्र में स्वागत है। गोवर्धन इको विलेज। और ये गोवर्धन इको विलेज जो है वो शांतिपूर्ण और प्रकृति के साथ अनुकूल तरीके से जीवन कैसे बिताया जाए इसलिए बनाया गया है, ताकि हम सब लोगों को ये अनुभव मिले कि प्रकृति के साथ अनुकूल जीवन बिताने से किस प्रकार से जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। हम सब लोगों का जीवन जो है अभी कृत्रिम बनते जा रहे हैं। ना हमें दूध शुद्ध मिलता है, ना हमें पानी शुद्ध मिलता है, ना हवा शुद्ध मिलती है। और ये शुद्ध नहीं मिलने की वजह से ना हमको विचार शुद्ध मिलते हैं, ना संग शुद्ध मिलता है, ना कार्य शुद्ध मिलते हैं करने के लिए। ज़बरदस्ती में ऐसे जो हमें अच्छा लगता नहीं है उससे भी कामों में हमको भाग लेना पड़ता है। और सामान्य जीवन जो हमको चलाना है, अपने आप को मेंटेन करना है, वो भी बहुत अभी अकृत्रिम हो गया है, यानी सॉरी अप्राकृतिक हो गया है, कृत्रिम हो गया है। इट हैज़ बिकम वेरी अननेचुरल। कभी कभी वो कहते हैं ना सफोकेटिंग हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ता है, और जो जिन लोगों के साथ नहीं रहना है उनको साथ रहना पड़ता है। ऐसा एक बहुत घुटन जैसी ज़िंदगी हो गई है। तो लोग सब अभी इंटरनेट में सर्फ करते रहते हैं, रिसॉर्ट, प्राकृतिक रिसॉर्ट। सब लोगों को रिलीफ चाहिए, मन को थोड़ा सा बहलाने के लिए। अंदर जो गैस कुकर के अंदर जो भरा हुआ है प्रेशर, उसको रिलीज़ करने के लिए थोड़ा सा शुद्ध हवा ले ली जाए, थोड़ा सा प्राणवायु से प्राण शक्ति वृद्धित की जाए, शरीर के लिए कुछ ऐसे किया जाए, योग अथवा आयुर्वेदिक, जिससे हम प्राकृतिक दृष्टि से स्वस्थ हो जाएं। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने ये संकल्पना रखी। और कृषि वाणिज्य क्षेत्र जो शहर से दूर हो, एक तरह से जंगल में हो, और जहाँ पर प्राकृतिक खेती की जाए बिना किसी केमिकल खाद से, गोबर के द्वारा बनाए गए खाद से धान्य का उपज किया जाए, जहाँ गायों का देसी शुद्ध जाति के गायों का पालन किया जाए, और उनके द्वारा जो गोबर गोमूत्र, जानबूझ के मैं दूध लास्ट में बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि सबका हमारा ध्यान गाय बोलते ही दूध पर रहता है, लेकिन गाय बहुत ऐसी चीज़ें देती हैं जो दूध से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गोबर, गोमूत्र, दूध, फिर दूध से बना हुआ दही और घी, इन सबका जीवन में कैसा उपयोग किया जाए, इसके बारे में एक उदाहरण रखें। हाँ, थियरी तो लेक्चर सब लोग चर्चगेट में भी दे सकते हैं, कोलाबा में भी दे सकते हैं, लेकिन उसका उदाहरण कौन देगा, करना कैसे है कौन बताएगा? थियरी इज़ वेरी इजी, प्रैक्टिकल वेरी डिफिकल्ट। तो उसका उदाहरण बनाने के लिए ये सब प्रयोजन है, ये सब मेहनत की है इतने सालों से। नदी किनारे वैतरणा नदी जो मुंबई को जल पुरोठा करती है, वो भी हमारे आसपास बाजू में रोड क्रॉस करेंगे वैतरणा नदी मिलेगी आपको। इस तरफ पर्वत है, हमारी गायें जो है वो जो शुद्ध घास होती है ना, जो किसी केमिकल से कोई प्रदूषित चीज़ों से नहीं मिली हुई है, ऐसी घासों पर चरते हैं, गौचारण होता है, और बड़े ही प्रेम से गायों की सेवा की जाती है, क्योंकि तो गाय भगवान को बड़ी प्रिय है। कल हम बता रहे थे कि भगवान ने अपने धाम का नाम भी गौलोक वृंदावन रखा है, कृष्ण भक्त लोक नहीं बताया है गौलोक वृंदावन, इतने भगवान को गाय प्रिय है, और गाय की जो सेवा करता है वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है। कुछ बातें बताना जरूरी है गाय के विषय में कि आपको यह प्रयोग करके देखिए, कभी भी आपको अगर कितना भी स्ट्रेस होगा, अगर बहुत भयंकर आपके ऑफिस में कुछ घटना हो गई या कुछ घर में हो गई या परिवार में समस्या हो गई और बहुत चिंतित हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत आपकी स्वास्थ्य भी खराब होते जा रहा है, सर दर्द है और बहुत भारी फिजिकल फ्रस्ट्रेशंस हैं, मेंटल फ्रस्ट्रेशंस हैं, तो आप गाय के पास जाइए, केवल गाय के पास खड़े रहिए, हो सके अगर गाय आपको अलाउ करती है तो गाय के ऊपर से आपका हाथ ऐसे फेरिए, 21 बार करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका सारा स्ट्रेस नष्ट हो गया है। अभी मैं MBBS डॉक्टर हूँ, आपको लगेगा कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, सुपरस्टिशियस, लेकिन अगर हमने अनुभव किया है उसका तो आपको बताना ज़रूरी है। सब चीज़ें हमारी मेडिकल किताब में लिखी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलोपैथी साइंस में नहीं लिखी गई है, जिसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमको सबको अपना जीवन जीना है। और मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुका है कि शुद्ध देसी गाय का, अभी उसको सब लोग A2 नाम से जानते हैं, A2 मिल्क, वो कितना हमारे आरोग्य के लिए परिपूर्ण है, सब प्रकार के पोषक मूल्य जो है वो उसमें उपलब्ध हैं, और केवल अगर कोई व्यक्ति गाय के दूध पर ही जीना चाहता है तो भी वो जी सकता है, हर प्रकार का पोषक द्रव्य गाय के दूध में उपलब्ध है। लेकिन गाय का जो सही रहस्य है वो उसके गोबर में है, जो हम सब लोग छी करके सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन जब गाय का निर्माण भगवान ने किया तो सारे देवताओं ने गाय के शरीर में प्रवेश किया और अपना अपना स्थान ले लिया कि दिस इज माय प्लेस, हाथ में कोई है, पैर में कोई है, इधर कोई है, पेट में कोई है, सब जगह सब लोगों ने अपना अपना स्थान लिया, और गंगा जी थोड़ा लेट आई, तब तक सारे सीट भर चुके थे तो गाय ने कहा कि आप मेरे मूत्र में रह जाओ, तो गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, और फिर उसके बाद में लक्ष्मी जी आई, द मोस्ट VIP केम द लेट लास्ट, तो उन्होंने कहा मेरे लिए कहाँ जगह है, तो गाय ने कहा मेरे गोबर में निवास करवाओ, तो फिर लक्ष्मी जी गोबर में स्थापित हो गई। देखिए, जिसको हम सबसे ऐसा क्या कहते हैं अशुद्ध ऐसे समझते ना, थोड़ा घिलौना समझते हैं, वही चीज़ें जो किसी भी अन्य प्राणी के लिए अस्पृश्य हैं, अछूत, वही चीज़ें गाय के विषय में बहुत पवित्र हैं, एकदम कॉन्ट्रास्ट है। आज भी शहर के लोग जानते हैं, शहर के लोग, हम लोग बहुत दुर्भाग्य है, हमको कुछ बेसिक जो प्राकृतिक नॉलेज है वो भी हमको प्राप्त नहीं होता है, ऐसे नहीं कि हम बुद्धि नहीं रखते हैं लेकिन नॉलेज ही नहीं मिलता है उसके बारे में। आज भी गाँव में गौमूत्र गोबर से हमारे घर को हम लोग लेपते हैं, फ्लोर को सारे निर्जंतुक कर देते हैं उससे, यहाँ तक कि उससे ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, और गोबर के द्वारा तो लक्ष्मी उसमें निवास करती है गोबर में, इसलिए अगर गाय के द्वारा अगर आपको सपोज मेंटेनेंस चाहिए तो गाय के द्वारा मेंटेनेंस दूध से नहीं होगा, गोबर से होगा, गोमूत्र से होगा, क्योंकि 300 से अधिक सिंपल चीज़ें गोमूत्र गोबर से बनाई जाती है जो बेचकर आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं और अपना जीवन के लिए भी उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब नॉलेज देना है लोगों को। जो गाय हमारे पूरे भारतीय संस्कृति के लालन पालन के लिए प्रमुख हिस्सा थी, द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस ब्लिस ऑफ इंडियन कल्चर वॉज काउ। लेकिन उसको सिस्टमैटिकली ब्रिटिश लोगों ने अलग कर दिया उसको। सिस्टमैटिकली मतलब पूरी योजनाबद्ध रीति से उसको हमारे कल्चर के सपोर्ट के जगह से निकाल दिया। आपको इतिहास पढ़ना जरूरी है, अभी वो समय नहीं बताने का। पूरी तरह से लॉर्ड वो मैक्स मुल्लर उसको पूरा फंड करके ब्रिटिश की रानी ने कई साल तक भारत के कल्चर को स्टडी करने के लिए भेजा। ये नहीं कि भारतीय कल्चर कितना महान है और वो हमको अपनाना है इसलिए पढ़ाई करो हमको सिखाओ, ये नहीं। स्टडी इसलिए करो कि कैसे इसका कल्चर का कमर तोड़ना है और ये पूरे समृद्ध देश को कैसे गुलाम बनाना है, इसलिए स्टडी करो। तो पूरा संस्कृत स्टडी किया उसने और संस्कृत का पूरा विद्यालय बनाया, वो आज भी है, मैक्स मुल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत, द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड, गो टू जर्मनी, अपना है वो पूरा। और फिर उन्होंने एक खत लिखा था रानी को कि पूरे भारत वर्ष में मुझे कहीं भी एक भिखारी नहीं मिला। आज मानेंगे इस बात को, बिलीव दिस, क्योंकि आज आपके कदम कदम पर भिखारी हैं, दाहिने हो रहे पीछे राइट हो रहे हैं, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, फ्रंट में है, बैक में, ऊपर है, नीचे भी, सब जगह भिखारी, कहीं भी जाओ। लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट दिया था रानी को कि भारत में सभी कहीं भी गरीब से गरीब देहात में भी मुझे कोई भिखारी नहीं मिला। और दूसरी बात कही कि भारत के संस्कृति का जो समाधान समृद्धि और आनंद है वो पूरी तरह से गाय पर निर्भर है, उनका पूरा कल्चर गाय के इर्द गिर्द है। और जब तक गाय इनके जीवन में है तब तक इनको कोई काट नहीं सकता है, कोई इनको गुलामगिरी करने की जरूरत नहीं है, इतने समृद्ध हैं, इतने संतुष्ट हैं। तो अगर भारत पर राज्य करना है, उन पर गुलाम उनको गुलाम बनाना है, तो पहले गाय को इनके कल्चर से हटाना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने चाय का बाग बनाया। चाय का बाग कहाँ होता है बताइए, आपका ज्योग्राफी कितना है पता चलेगा। हाँ नहीं, पहाड़ के उतार पे होता है, सिंपल। और पहाड़ के उतार पे पुराने जमाने में गाय चरती थी, उसको गायरान कहते हैं, गायरान। गायरान मतलब इसे फ्री लैंड, गवर्नमेंट उसको इस तरह से बनाती है कि वह रखा ही गया, उसको कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है, केवल गाय चरेगी वहाँ पर, प्राकृतिक घास आएगी वहाँ पर, और वो प्रचुर मात्रा में ऐसी भूमि रखते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने चाय लगाई, तो क्या हो गया, गाय का नेचुरल फ्री खाना खत्म हो गया। और फिर वहाँ पर चाय बना के आपको दिया, कहा कि इसको पियो, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, तो उत्साह आएगा, एकदम सो रहे तो भी फ्रेश हो जाएंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशों के आने के पहले हमारे देश में चाय भी नहीं थी, जो आज घर घर में एक साल होने के बाद बच्चा पीने लगता है और नहीं देंगे चाय किसी मेहमान को तो बुरा मानता है, यहाँ तक वो अपने कल्चर में घुस गया है। लेकिन चाय हमारा कल्चर नहीं है, चाय ब्रिटिशों ने हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया है, सबको पहले फ्री में दिया, फिर बेचा, फिर अच्छी तरह से व्यवसाय किया। इस तरह से धीरे धीरे सूक्ष्म रीति से, समझ में नहीं आएगा, इस तरह से धीरे 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 गाय को हमारे कल्चर से हटा दिया। और ये भूमिका हमारे मन में बिठाई कि भारतीय वस्तु बहुत घटिया दर्जे की होती है और विदेशी वस्तु बहुत अच्छे दर्जे की होती है। ये एक थॉट प्रोसेस हमारे मन में ऐसा ड्रिल कर दिया कि आज भी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो भारत में पढ़े हैं, वो भी ये सोचते हैं कि अमेरिका में और विदेश में जाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो जाकर वहाँ एडमिशन प्राप्त करता है उसको हम बड़ा सम्मान देते हैं कि आपका बेटा US में पढ़ रहा है, आपकी बेटी इंग्लैंड में पढ़ रही है। ये जो मनोवृत्ति है ना, ये बहुत ढंग से हमारे दिमागों में ब्रिटिशों ने ड्रिल कर दिए। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, बौद्धिक गुलामगिरी इसको बोलते हैं। और इस बौद्धिक गुलामगिरी को अच्छी तरह से यशस्वी तरीके से दिमाग में घुसाने की वजह से उन्होंने यहाँ पर 150 साल राज्य किया और एक तरह से हमारे संस्कृति के सारे कपड़े उतार दिए और हमारी संस्कृति को उनके कपड़े पहना दिए। हर चीज में, वस्त्र में, खाने में, इसमें उसमें, जो आप जीवन के लिए आवश्यक है, हर चीज को उन्होंने अपने पाश्चिमात्य संस्कृति को हमारे कल्चर में घुसा दिया। यहाँ तक कि हम कपड़े भी उनके जैसे पहनते हैं। उनकी फैशन चेंज हो गई तो हम कपड़े भी हमारे चेंज कर देते हैं। हमारे हेयर स्टाइल भी वहाँ से आती है। कोई बैठा हुआ है विदेश में, वो दिन रात सोच रहा है कैसे इनको हमारा कल्चर दिया जाए, और हम लोग बड़ी यशस्वी तरीके से उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो भारत की संस्कृति को, भारत के गौरव को, भारत के समृद्धि को अगर जागृत करना है तो हर एक हमारे जैसे भारतीय को जागृत होना पड़ेगा और अपने भारतीयत्व को जगाना पड़ेगा। हु एम आई, मैं कौन हूं? सबसे पहले मैं आत्मा हूं, उसके बाद मेरा शरीर भारतीय है। इस पवित्र भूमि में मुझे जन्म मिला है तो मेरा शरीर भारतीय, इस पर गर्व होना चाहिए। क्योंकि मैंने जितना विदेश में यात्रा की है आज तक, इतने सालों में जितनी विदेश यात्रा की है उतना मैं अधिक भारतीय होकर लौटा हूं। आई कैन टेल यू प्राउडली आई एम अ हार्ड कोर इंडियन, हार्ड कोर एंड प्राउड इंडियन। भले हमारे देश में हर 2 सेकंड में एक फ्लाइट नहीं उड़ती होगी किसी एयरपोर्ट से, हु केयर्स, लेकिन हमारी भूमि में भगवान है, हमारी भूमि में कल्चर है। इस देश में पहले दरवाजे पर लिखा करते थे सुस्वागतम, अभी लिखते हैं कुत्तों से सावधान। किसने लाया ये स्टेटमेंट बताइए? ये विदेशी स्टेटमेंट है। जो मेहमानों को भगवान की तरह मानते हैं, ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है भारत के जैसा, जिसको अतिथि देवो भव कहते हैं, जो बिना तिथि के, बिना फोन किए, बिना SMS किए अपॉइंटमेंट लिए अगर आपके घर पे आ जाता है और उसको आप पानी भी देते हो तो आपको भगवान को पानी देने का लाभ आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। इतनी हमारी पवित्र संस्कृति है। और हर रोज हमारे भारतीय लोग सुबह उठते ही खेती में जाने के पहले भी गाय चराकर, गाय घुमा कर लेके आते थे। आज वही भारतीय जो है कुत्ते घुमाता है सुबह, और फिर बड़े प्रेम से पूछते हैं कुत्ता कौन सा कुत्ता है आपका, आपका अल्सेशियन है कि जर्मन शेफर्ड है कि ये है कि वो है, कहाँ से लाया, वैसे उसके सारे गौरव करते हैं, उसके ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे चाटता है, ऐसे पीता है, उसका ही गौरव करते रहते हैं। और अगर हमारे ऐसा कोई आदमी गाय लेके निकला तो देखिए कौन ऑड मैन आउट, हू इज दिस मैन गाय लेके घूम रहा है। जो गौरव की बात है वो आज घलौनी बात हो गई है, और कुत्ते को घुमाना ये गौरव की बात हो गई है। ये किसने दिया है कल्चर हमको? उन्होंने दिया है, और बड़े प्रेम से हम लोग ले रहे हैं उसको। ये सब काटना चाहिए। इसलिए हमारे नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ बैठे ना, उनके ऊपर ये ड्रिल करना चाहिए संस्कृति का, हमारा जो गौरव है। हाँ, लेट अस इंस्टिल प्राइड अबाउट अवर बीइंग इंडियन इन अवर चिल्ड्रंस ब्रेन। सो वी कैन से कि कम से कम जो खो गए हम लोग अपनी पीढ़ी से, अपने 2-4 पीढ़ियों से पहले, वो अपने कम से कम अगली पीढ़ी को हम देंगे तो भारतीय लोगों का भारतीयत्व और भारतीयत्व का गौरव जो है ना वो जागृत हो जाएगा, और पुनः हम लोग अपने गौरवशाली संस्कृति को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बड़े बड़ा आनंद है कि मैं धोती कुर्ता बैठकर आपको यहाँ पर कथा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा संस्कृति है। हर रोज हमारे गांवों के और शहरों के, जहाँ पर भी हम रहते थे, हर रोज काम से आने के बाद में एक संस्कृति थी कि घर के बुजुर्ग लोग बैठकर रामायण, महाभारत, भागवत, हरि कथा पढ़ते थे विदाउट फेल। सबको पता है, बच्चों को पता है स्कूल से आकर क्या करना है, पिताजी को पता है काम से आकर क्या करना है, और किसान को पता है खेत से आकर क्या करना है। सब फिक्स थिंग, आना है, हाथ पांव धोना है, फ्रेश होना है, और कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है तो लेना है, और बैठ जाना है। फिर घर से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बड़ा ग्रंथ खोलेंगे और कहानी बताना शुरू करेंगे, और इतना आनंद हुआ करता था उसमें, इतनी सुंदर सुंदर कहानी सुनते हुए। उसके बाद में भगवान की आरती होती थी और फिर सब लोग प्रसाद लेते थे। प्रसाद क्यों कह रहे हैं, डिनर क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वो भगवान को भोग लगा कर उसका ग्रहण करते थे। 1973 में भारतवर्ष में टेलीविजन आ गया, जो केवल 2-3 घंटे ही हुआ करता था। शाम को केवल मुंबई दूरदर्शन 6:30 किलबिल से शुरू होता था और 9 बजे ख़त्म होता था, और शनिवार रविवार को एक मूवी होती थी। हाँ, जैसे ही वो टीवी आ गया, रामायण महाभारत बाजू में हो गया, और वो दादाजी जो बड़े चाव से रामायण पढ़ते थे वो भी वो इडियट बॉक्स के सामने बैठकर अपना संध्याकाल बिताने लगे। फिर लोगों का ये प्रेम उसके प्रति देखकर फिर उसको 11 बजे तक किया गया, फिर 12 बजे तक किया गया, फिर दिन में चालू किया गया, फिर एक ही क्यों, दो चालू किए गए, चार चालू किए गए, फिर अभी आजकल हजारों चैनल हैं, इतना व्यसन लोगों को हो गया है। इस तरह से ब्रिटिशों ने जो हमारा नुकसान 150 साल में नहीं किया, वो केवल 15-20 साल में अमेरिकन टेलीविजन ने कर दिया। बचे बचे कुछ कपड़े भी उतार दिए सब। आज गांव में हमारे देहात के अंदर लोग जो है ना वो रेलवे के पटरी पर टट्टी करते हैं जाकर, लेकिन टट्टी पर बैठकर भी उनके हाथ में मोबाइल है और घर में एंटीना लगा हुआ है। खाने को अन्न नहीं है लेकिन हाथ में मोबाइल और घर में टीवी है। ये सारा जो है ना ये गुलामगिरी का लक्षण है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी देखना ही नहीं चाहिए और कंप्यूटर यूज नहीं करना चाहिए, हम लोग भी सब यूज करते हैं हाई टेक्नोलॉजी, लेकिन वो हमारे उन्नति के लिए यूज करते हैं, अवनति के लिए यानी ह्रास के लिए यूज नहीं करते, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर कल्चर एंड कॉन्शियसनेस। तो ये सब लोगों को सोचना जरूरी है कि हम मन से क्या हैं, मन से हम भारतीय हैं, वैदिक हैं, कि मन से हम विदेशी हैं। तो ये चेंज करने के लिए ऐसा लाइफस्टाइल आवश्यक है कि सादगी में भी आनंद है, ये भी समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। हमको लगता है कि हर चीज़ एफ्लुएंट होने से ही उसमें आनंद मिलता है, लेकिन अधिकतर जितनी चीज़ें एफ्लुएंट हैं और हाईटेक हैं उसमें टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और दुख ज़्यादा मिलता है और समाधान बहुत कम मिलता है। लेकिन आप मोबाइल कैसे बनाए हैं, कितना भी बड़ा हाई फाई मोबाइल लेंगे 3 साल बाद चेंज करना है, उसको रिपेयर नहीं होता है, वो ओनली यू क्रिएट ई कचरा, दैट्स ऑल। लेकिन आप देखिए फॉर एग्जाम्पल गाय रखेंगे, वे शहर में कहाँ रखेंगे, मेरी बेटी मुझे बहुत कहती थी पापा एक गाय लेके आएंगे, बोले कहाँ रखेंगे गाय, बिल्डिंग में कहाँ गाय रखेंगे, बोले हमारे कार के गैरेज में रखेंगे, तो बिल्डिंग वाले रखने नहीं देंगे। तो मेरी बेटी की एक नेचुरल इच्छा थी बचपन में कि एक गाय होनी चाहिए, लेकिन नहीं पूरी हो सकी क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं। तो इस तरह की जो प्राकृतिक इच्छाएँ हैं वो भी नहीं पूरी हो सकती है, क्योंकि हमारी बेटी ने बचपन से ही हरे कृष्ण संस्था में अपना परवरिश प्राप्त किया है, तो सब कुछ जानती है वो बचपन से ही। वो बहुत गाय पर प्रेम करती है, अब इसको शादी हो चुकी है, वो डिफरेंट लाइफ बात है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि बचपन में ही अगर इस संस्कृति का परिचय किसी को प्राप्त हो जाए तो उसमें एक स्वाद उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होगी और उसी विचारधारा को लेकर अपना वो जीवन अपनाएगा। तो हम सब जो माता पिता हैं उनको उनका एक कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को केवल खाना पीना रहना एजुकेशन ना दें, हमारे बच्चों को हम एक संस्कृति दें, कल्चर, और वो हमारी गौरवशाली संस्कृति जो है ना वो दें उनको, और उसी कल्चर का एक हिस्सा है प्राकृतिक जीवन, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध मन और उच्चतम लक्ष्य जीवन का, द हाइएस्ट गोल। कितनी कितनी प्रवचनों में और कितने सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में बड़े चाव से हम कहते हैं सिंपल थिंकिंग, हाई हाई क्या बोलते हैं इसको, हाई व्हाट इज दैट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादी रहानी, उच्च विचार सरणी, ऐसे मराठी में बोलते हैं। तो केवल कॉन्फ्रेंस में रहते हैं वो, घर पे नहीं आते, वाओ वाओ कह के घर आ जाते हैं हम लोग, लेकिन वो जीवन में उतारना चाहिए। और जितना हम लोग सादगी में रहेंगे उतना हमारा विचार सरणी उच्च हो जाएगी और जितना उतना ही हमारे जीवन में आनंद आएगा। सबसे पहले हम सबको जरूरत जीवन में क्या है, सुख और आनंद की, कोई इसमें दो राय है किसका, एनीबडी हैज डिफरेंट ओपिनियन कि वी हैव समथिंग एल्स देन हैप्पीनेस इन लाइफ एज अ गोल ऑफ लाइफ। सबके लिए, जो पढ़ा लिखा है जो अनपढ़ है, सबके लिए खुशी चाहिए सबको। एवरी डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग क्या सोचते हैं आप कि आज सुख मिलना चाहिए और दुख नहीं मिलना चाहिए, उसके पहले बोलते हैं दुख नहीं मिलना चाहिए, सुख एक बार नहीं मिलेगा चलेगा लेकिन दुख जरूर नहीं मिलना चाहिए, और हो सके तो सुख मिलना चाहिए। चाहे आप डिवोटी हो या डिवोटी नहीं हो, काम हमारे हर दिन का, हर महीने का, हर हफ्ते का एक ही उद्देश्य होता है, हैप्पीनेस मिले। मैं भी यहाँ पर आया हूँ और आप भी यहाँ पर आए हैं कुछ समय के लिए, कुछ हैप्पीनेस मिले, कुछ सुकून मिले मन के लिए, शांति प्राप्त हो, एक दिन ऐसा हो जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, चैन की सांस ले लें गहरी अंदर तक, पेट तक ले लें इसको। लेकिन वो कैसे मिलेगा उसके बारे में हम विचार नहीं करते। और आप भगवान का जीवन आप देखेंगे तो सबसे पहले पर्यावरणवादी हमारे भगवान थे। मैंने भी जब पहली बार सुना ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं अचंभित था उस समय। कालिया नाग को मर्दन करके भगवान ने जल का शोधन किया, जल तत्व को शुद्ध किया भगवान ने, क्योंकि जल तत्व में विष कालिया का फैला हुआ था, सब जीवन सृष्टि वहां पर त्रस्त हो गई थी। तो भगवान ने कालिया का दमन करके उस जल को विष रहित कर दिया और जल को शुद्ध कर दिया। फिर भगवान ने माटी खाकर पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। दो तरीके से किया, जब वो भगवान स्वयं बछड़े बने और स्वयं ग्वाल बाल बने, आपको पता होगा कहानी, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और गाय ग्वाल बालों को सब छीन लिया था भगवान ने एक समय पे। तो उस समय सारे बछड़े भगवान बने थे और वैसे ही घर चले गए थे, किसी को पता नहीं चला कि हमारे बछड़े कहाँ गए, हमारे ग्वाल बाल कहाँ गए। वैसे ही भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया, एक्सपांड किया और वैसे ही घर गए, एक साल तक किसी को पता नहीं चला। और वो बछड़ों के रूप में भगवान ने हर कण कण की घास को खाया है और ब्रज को चाटा है, वृंदावन के डस्ट को, अर्थ को, और जब पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है। फिर जब भांडीर वन में प्रलंबासुर आया, उसका भगवान ने वध किया, उसके बाद वध करके वो सो गए सब ग्वाल बाल, तो चारों तरफ से आग घिर गई, तो आग के आँच से सब लोग जग गए, अरे त्राही माम आग लग रही है, भगवान बचाओ। तो भगवान ने सबको कहा निश्चिंत रहो और अपना मुंह खोला और सारी आग को भगवान ने पी लिया। दावानल पान कहते हैं उसको, दावानल का मतलब है फॉरेस्ट फायर, और दावानल पान का मतलब उन्होंने उसको पी लिया। तो सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ, ग्वाल बालों को, सबने जाके कंप्लेंट किया, अरे ये तो माटी खाता नहीं है केवल, ये आग भी पीता है। लेकिन इस तरह से भगवान ने अग्नि तत्व को शुद्ध किया। व्योमासुर को मारकर भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया, अवकाश यानी स्पेस विच इज देयर इन द बॉडी ऑल्सो। कौन सा बच गया? पृथ्वी, वायु, वायु तत्व बच गया। तो तृणावर्त जो था ना, बवंडर के रूप में आया था, लाइक हरी वर्लपूल के रूप में आया था वो, उसको मारकर भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया। तो भगवान सबसे पहले पर्यावरणवादी है, लेकिन उनका पर्यावरण का जो तत्व है उनको हमको मेंटेन करना चाहिए, हमारे तरफ से वो पर्यावरण के तत्व जो है वो अशुद्ध नहीं होने चाहिए। इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है एक आदर्श जीवन पद्धति को बताने के लिए, जो कम से कम उसके विचार भी आप लेके गए और इनको देखकर प्रभावित भी हो गए और लोग ज़्यादा यहाँ पर आए और देखे उन्होंने यहाँ पर कि कैसे प्राकृतिक जीवन पद्धति भगवान भक्त की भक्ति के साथ मिलन होके अपने जीवन को समृद्ध बना सकती है, और कैसे सबसे पहले हम खुश हो सकते हैं और खुश होने के बाद कैसे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। 25 एकड़ की जगह पर गोवर्धन खड़ा करना, बहती हुई यमुना बनाना, केशी घाट, वृंदावन के मंदिर बनाना, बरसाना, नंदगांव, सात वृंदावन के मंदिर, उसी तरह से प्रकट करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है। आप आज भी वृंदावन जाएंगे, मथुरा वृंदावन में, तो ये सारे मंदिर आपको इसी तरह से मिलेंगे, इनका एंट्रेंस, इनका शेप, इनका डिज़ाइन, इनका कलर, इनके एंट्रेंस पे कौन से डिज़ाइन है, कौन से डिज़ाइन का दरवाज़ा है, एक्चुअली हूबहू बनाया है उसको, केवल 1/3 साइज में बनाया है टू गेट अ टोकन ऑफ एक्सपीरियंस। एंट्रेंस के बाद में लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, वो भी एग्जैक्टली हूबहू है। आज भी आप केशीघाट जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो यहाँ केशीघाट बनाया है वैसे ही केशीघाट वहाँ पर भी है, और भी आगे डेवलप होगा। आप आते रहिए, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा कि वृंदावन धाम यहाँ पर पूरी तरह से प्रकट होते जाएगा। और जैसे वृंदावन धाम असीम है, अनलिमिटेड है, वैसे ये भी अनलिमिटेडली ग्रो होते रहेगा आगे आगे। देखिए जो मदन मोहन जी का मंदिर आपने कल दिखाया मैंने जिन लोगों को, वो तो 1/3 साइज़ का है, लेकिन फुल साइज़ का मंदिर उसके आगे अभी ऑलरेडी बन चुका है, नवंबर में उसका उद्घाटन होगा। जो बड़ा मंदिर अभी जहाँ पूजा होती है उसके सामने है वो। तो मैं आपको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन फिर विनती जरूर कर सकता हूँ कि आप हर एक व्यक्ति अपने अंदर के भारतीयत्व को जगाइए और अपने बच्चों को वो संस्कृति दीजिए, संस्कार दीजिए, और जब रात को कहानी बताने का समय आता है तो बच्चों को कृष्ण भगवान की, राम भगवान की और भगवान के अन्य अवतारों की कहानी सुनाइए, क्योंकि इन कहानियों के अंदर बहुत सारा शिक्षाएं, उपदेश, आदर्श बसे हुए हैं। केवल केवल मनोरंजन करने वाली कहानी नहीं है, इन कहानियों में बहुत सारा श्रेष्ठ उपदेश, उच्च जीवन पद्धति और दिव्य आध्यात्मिकता समाई हुई है। और इसलिए हमारा वो कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को हम दे दें। केवल जन्म देना और पढ़ाई करके बड़ा होना, बड़ा कर देना और अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाना, यही केवल जीवन का माता पिताओं का कर्तव्य नहीं है। माता पिताओं का कर्तव्य है कि जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, माता न सस्यात, गुरु न सस्यात, ऐसे भागवत में लिखा है कि उन व्यक्तियों को माता पिता, राजा और गुरु बनने का अधिकार नहीं है। चार लोगों का नाम बताया, हाँ, माता पिता, राजा और गुरु, ये चार पद या चार पोजीशंस किसी भी लेने को, किसी भी व्यक्ति को लेने का अधिकार नहीं है जब तक इन चार पोजीशन के ऊपर जो निर्भर हैं, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन दिस फोर पीपल, मदर, फादर, किंग एंड गुरु। कौन कौन है वो? माता पिता के बच्चे, और पुरुषों के लिए बताया पति बनने का भी अधिकार नहीं है। उन पर निर्भर कौन है? पत्नी। राजा पर कौन निर्भर है? प्रजा। और गुरु पर कौन निर्भर है? शिष्य। तो ये चारों पोस्ट किसी को लेने को अधिकार नहीं है जब तक हमारे ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनको मुक्ति के रास्ते पर जब तक हम नहीं डाल सकते हैं तब तक वो पोस्ट लेना हमारा अधिकार नहीं है, ऐसी श्रीमद् भागवत में लिखा है। यू कैनॉट बिकम गुरु इफ यू कैनॉट डिलीवर योर डिसाइपल्स फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। यू कैनॉट बिकम मदर एंड फादर इफ यू कैनॉट डिलीवर योर चिल्ड्रेन एंड वाइफ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यू कैनॉट बिकम अ किंग टिल यू आर एबल टू डिलीवर योर प्रजा फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। सबको मुक्ति के रास्ते पर प्रेरणा देकर रखने की जो जिम्मेदारी है जब तक वो हम नहीं निभा सकते या निभाने के योग्य नहीं है तब तक इनमें से कोई भी पोस्ट हम स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि शादी नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, राजा नहीं बन सकते और गुरु भी नहीं बन सकते। कितनी उच्च विचार श्रेणी। और हम लोग सोचते हैं कि खाना पीना खिलाया, अच्छा स्टेइंग दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया, एजुकेशन दिया और मेंटेनेंस करने के लिए केपेबल बना दिया तो हो गया हमारा काम। फिर क्या होता है बाद में? फिर मेंटेनेंस करके इतने एफ्लुएंट हो जाते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको देखने के लिए वो नहीं आ सकते, चाहते हुए नहीं आ सकते। जिस चीज़ पर आपको गर्व था कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, वही चीज़ आपके लिए दुख का कारण बनती है क्योंकि वो अमेरिका से फिर वापस यहाँ नहीं आ सकता। कहते मामा आई लव यू वेरी मच, आपको कितना पैसा चाहिए, आप सबसे बेस्ट डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन बेटा आप कब आओगे? नहीं मामा छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं आ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं उसके अंदर, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसे हमारे आदर्श हो गए हैं, ऐसे हमारा लक्ष्य हो गया है कि वो ही हमारे अहित में सहभाग करता है। इट बिकम्स अ कॉज ऑफ आवर डिस्ट्रेस। अंधेरे में मेरे दोस्त के घर की एक कॉलोनी है, इसका नाम राम भरोसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ नाम ही देखो, बहुत बढ़िया नाम है। पुराने जमाने में जिंदगी राम भरोसे हुआ करती थी, अभी वो जोक हो गया है, राम भरोसे हिंदू होटल। लेकिन सबकी जिंदगी राम भरोसे होनी चाहिए। तो राम भरोसे हिंदू होटल में कम से कम 450 फ्लैट्स हैं। वो मेरा एक हॉस्पिटल का डॉक्टर दोस्त हैं, वो भी उनका ही घर वहाँ पर है। आपको बताऊँ, आपको इतना आश्चर्य होगा सुनकर, सच अ सरप्राइजिंग थिंग, कि 450 में से जितने फैमिली में जितने बच्चे हैं वो सब बच्चे उस कॉलोनी में अमेरिका में हैं। एवरी सिंगल चाइल्ड ऑफ दैट फैमिलीज, दोज फैमिलीज इन दैट सोसाइटी इज इन अमेरिका। और वो सोसाइटी में केवल बुढ़े माँ बाप रहते हैं और वो सुबह चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा योगा करते हैं, सांस लेते हैं, चाय पीते हैं, बीच में बातें करते हैं। और सब लोग कहते हैं वो आपका बेटा कभी आने वाला है, आपका बेटा कभी आने वाला है, यही डिस्कस करते रहते हैं। अधिकतर सबको उत्तर रहता है कि नहीं आने वाला है। दिस इज वॉट इज अवर करंट स्टेटस ऑफ अफेयर्स। और हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी उसमें से नहीं गुजरेंगे। वी ऑल्सो विल ट्रेड द सेम पाथ इफ वी कीप द सेम प्रिंसिपल्स एंड सेम आइडियल्स, वी विल गो थ्रू द सेम पाथ ऑफ सफरिंग। तो उस समय पर हमारे वेल्थ का, हमारे बच्चे के वहाँ होने का गर्व का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होता है। वी आर सफरिंग लोनलीनेस। इसलिए संस्कृति को बढ़ाना जरूरी है। धन को बढ़ाने की जरूरत है निश्चित रूप से, लेकिन संस्कृति जब तक रहेगी तब तक वो धन भी अर्थपूर्ण रहेगा, इट विल बी मीनिंगफुल इन आवर लाइफ। तो आइए गोवर्धन इको विलेज में आते रहिए और ये सादगी के तत्व जो हैं उसको अपनाते रहिए, इम्बाइब कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, बच्चों को बताइए। और सच्ची खुशी मनुष्य जीवन में क्या होती है उसका परिचय करके जीवन में उतारिए। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन सच्चा जो आनंद है ना वो बहुत 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 अनलिमिटेड है। एज यू एक्सप्लोर यू विल कम टू नो मोर एंड मोर एंड मोर, सो मच ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। नहीं तो फिर MBBS करने के बाद मैं इस मार्ग में क्यों आता? हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते ऐसे, वी कैन बिकम एफ्लुएंट। आप लोगों को मन में प्रश्न होता होगा कि अरे एक डॉक्टर बैठ के भगवान की कथा कैसे कर सकता है, हाउ हाउ हाउ। लेकिन भाग्य हमारा ये है कि MBBS पढ़ते पढ़ते ही फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही किसी भक्तों की कृपा से हमको इसका परिचय हुआ। हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत आर्गुमेंट किया उनके साथ में, लेकिन एक साल के बाद बहुत भयंकर एग्रेसिव आर्गुमेंट करने के बाद में फिर मुझे यकीन हुआ कि यही सच्चा है, वो उसको फिर अपना लिया। और अच्छा हुआ कि करियर के शुरुआत में ही इसको अपना लिया, ताकि पूरा करियर का रास्ता जो है वो इसी रास्ते से चला गया। करियर भी अच्छा हुआ और उसके साथ में ये भी समृद्धि आध्यात्मिक वो भी हमारे रास्ते में आती रही। और आज उसको 35 ईयर्स हो गए हैं जब से उसको हमने अपनाया जीवन में। और कभी भी ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें पिछले साल से अधिक आनंद उस साल में नहीं आया, बिलीव मी। हाँ, मैं केवल यहाँ पर आपको बहकाने के लिए नहीं बैठा हूँ, आई एम नॉट हियर टू बिविल्डर यू विद गोल्डन पोएटिक स्टेटमेंट्स। लेकिन कोई ऐसा साल नहीं गया, कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसके पिछले महीने से अधिक आनंद उस महीने में नहीं मिला। और इसलिए विश्वास है कि 35 साल तक अगर ये सत्य है तो आगे का भी हर साल आनंद में आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम होता ही रहेगा। वो आनंद के सागर में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, हर क्षण आनंद प्राप्त होते रहेगा। यू टेल मी, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसको स्थिति अच्छी लगी कि नहीं? जिस जीवन में हर क्षण में आनंद बढ़ता रहेगा, ऐसा आपको अच्छा लगा कि बुरा लगेगा? जिस जीवन में हर व्यक्ति आपसे प्रेम करने वाला होगा, आपका संग ऐसा है कि हर व्यक्ति आपको दिल से चाहता है, आपको गारंटी है कि आपको चाहने वाले हर व्यक्ति आपके संकट समय पर खड़े रहेंगे, ऐसा अगर स्थिति आपको मिलेगी तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे उसको? या दूर से देख के डरेंगे, अच्छा तो है लेकिन बहुत डर लगता है अंदर जाने के लिए, ऐसा लगेगा कि आपको? बट स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो हम लोग बचपन में गाना सुनते थे ना, लेके चले मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये गाना सुनकर एक व्यक्ति हरे कृष्ण में आया। रेल के पटरी पर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था वो, आज से 30 साल पहले की बात है। He was about to commit suicide. लेकिन भारत अपना इतना गौरवशाली देश है ना, कि उस समय कोई भी गणपति नवरात्रि कुछ चल रहा था और गणपति हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ पर लाउड स्पीकर लगता है और बहुत सारे गाने लगाए जाते हैं, ठान ठान ठान, कान भी फूटना चाहिए, ऐसे गाने लगाते रहते हैं। तो वो जो बेचारा आत्महत्या करने के लिए रेलवे के पटरी पर क्रॉसिंग लाइन पर खड़ा था, तो किसी लाउड स्पीकर पर ही गाना चल रहा था। It's a fact. I can make you meet that person also. तो ये गाना सुनकर उसके मन में विचार आया कि हो सकता है कोई ऐसी जिंदगी हो जिसमें गम भी ना हो आंसू भी ना हो। और वो फिर ऐसे विचार करते 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 हरे कृष्णा के मंदिर में पहुंच गया। और उसने, जैसे मैंने कल आपको बताया, कुछ लोग थे गौलोक का वर्णन सुना उसने, श्रिया कांता कांता परम परुणा कल्पतर वो द्रुमा भूमि चिंता मई गणमयी सोम अमृतम कथा गानम नाट्यम गणमयी, सब सुना उसने कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर प्रेम का वास्तव्य है, प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का आदान प्रदान है, जहाँ पर भगवान प्रेम के मूर्ति निवास करते हैं, कोई गम नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, गंदगी नहीं है, मल मूत्र नहीं है, पसीना नहीं है, खुशबू है सब जगह पर, हर एक वाक्य जो है वो काव्य है, हर एक कदम जो है वो डांसिंग स्टेप्स हैं, पदलालित्य है। तो उन्होंने पूछा यहाँ कैसे जाना है, तो उन्होंने कहा ऐसा इसका एक प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा। तो उन्होंने वो प्रोसीजर भी चालू किया। आज वो हमारे हरे कृष्णा चौपाटी वाले मंदिर में जो कांग्रेगेशन है उसके सीनियर काउंसलर है, वो सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर। उनके उनके निर्देश में आज कम से कम 70-80 लोग उनका उपदेश लेकर अपने जीवन को समृद्ध कर रहे हैं। ही हैज़ बिकम अ स्पिरिचुअल काउंसलर टुडे एंड ही हैज़ नेवर गॉन अगेन टू द रेलवे ट्रैक्स। अभी ये भी भारतीय संस्कृति का गौरव है ना। अभी विदेश में कहा आउट पर लगता नहीं है, नो साउंड एवरीवेयर, शांति, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन वो जो संस्कृति यहाँ पर है कि नवरात्रि में गणपति में लाउडस्पीकर लगाते हैं, भगवान के भजन लगाते हैं, अभी वो सब भ्रष्ट हो गया है। लेकिन उसी कल्चर ने एक व्यक्ति की जिंदगी बचाई और उसको भगवान के चरणों में आके छोड़ दिया। तो भारत का जो संस्कृति है वो गौरवशाली है, किसी अलग तरीके से है, लेकिन आपको वो समझना चाहिए कि दिस इज वंडरफुल एक्चुअली। तो वो आदर्श आनंदमयी जगह अभी भी है और वो है श्री वृंदावन धाम। और वो वृंदावन धाम बहुत दूर है यहाँ से, गौलोक वृंदावन, वहाँ जाने के लिए योग्यता हमारे अभी नहीं है। लेकिन भगवान अपनी दया से उसी धाम को पृथ्वी पर प्रकट करते हैं, जिसको हम भौम वृंदावन कहते हैं। भूमि पर प्रकट हो गया वृंदावन, पृथ्वी पर प्रकट हो गया वृंदावन, और उसमें ये गोवर्धन, यमुना, वृंदावन धाम, सब 108 वन भगवान के, प्रमुख 12 वन सब प्रकट हो गए हैं। और उसमें ये गोवर्धन भगवान ने वहाँ से भेजा है। क्यों करते हैं भगवान ऐसा, जिसको छोड़कर हम लोग यहाँ पर आए हैं? फिर उनको चाहते हैं भगवान, सबको, हम सबको चाहते हैं वो, इसलिए बार बार आते हैं यहाँ पर, खुद अपने धाम को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने शास्त्र को भेजते हैं, अपने मंत्र को भेजते हैं, अपने आप को भगवान अपने नाम में अर्पण करते हैं पूरा। हाँ, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता न स्मरणी न कालहा, पूरा अस्तित्व भगवान ने उसमें डाल दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया है, पूरे क्वालिटीज ऐश्वर्य गुण सबके साथ में फुल पर्सनालिटी को इन्वेस्ट कर दिया है। और वो नाम आपको दिया है, ले लो, इस नाम को उच्चारण करो, मेरी प्राप्ति हो जाएगी आपको। कितने दयालु है भगवान, हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं और आसान से आसान करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मुश्किल से मुश्किल भी लगता है जिसको, उसको भी आसान हो जाए, ऐसा तरीका देते हैं वो उनको प्राप्त करने का। तो ये गोवर्धन जो यहाँ पर हैं वो भगवान ने प्रकट किया, ताकि भगवान अपने अंतरंग मोस्ट इंटीमेट उत्कट लीलाओं को वो यहाँ पर प्रकट कर सके। और क्यों करते हैं प्रकट भगवान लीलाओं को? ताकि वो लीलाएं जो नित्य रूप में अपने धाम में भगवान करते रहते हैं उसकी झलक यहाँ दिखाएंगे, तो उनको देखकर यहाँ के लोग आकर्षित हो जाएंगे। टू अट्रैक्ट द पीपल हियर, भगवान ने यहाँ पर लीलाओं का प्रदर्शन किया, अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया, आप सब लोग जानते हैं वो। लेकिन आचार्यों की, संतों की कृपा से उसका सार भी समझ में आता है कि भगवान ने इंद्र जैसे देवताओं के राजा का गर्भ हरण किया, अपने बाएं उंगली के अग्र भाग में पूरा पहाड़ उठाकर रखा 7 दिन 7 रात तक, और इंद्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति शक्ति जो थी ना, संवर्तक बादल, जो प्रलय काल में इंद्र भेजते हैं और सृष्टि का टेम्पररी विनाश करते हैं, इट्स कॉल्ड मिनी प्रलय। वो मिनी प्रलय के समय पर जो बादलों से वर्षा का इंतजाम होता है उसको संवर्तक प्रलय बादल कहते हैं। वो बादल उन्होंने भेजे, मतलब अपना मैक्सिमम जो पावर है उनका, एक वज्र है और एक संवर्तक बादल है, दोनों लगाए उधर कि ब्रज को नष्ट किया जाए। इन्होंने मेरी पूजा बंद की, एक नटखट बालक के नटखट बड़बड़ करने से इन्होंने पूरा प्लान चेंज कर दिया, इतने सालों का रिवाज को बंद कर दिया, उस गांव को ही नष्ट किया जाए। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात तक उठाया, इतना दिन तक उठाया कि सारे बादलों का पानी खाली हो गया। संवर्तक बोले अभी क्या करें, अभी वज्र लेके आता हूँ, तो वज्र को परार किया था, वज्र का भी कुछ परिणाम नहीं हुआ। फिर इंद्र को होश आया, अरे बाप रे, मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति को जो केवल अपने बाएं हाथ की उंगली के अग्र भाग से परास्त कर सकता है वो तो केवल भगवान ही हो सकता है, ये मैं जानता हूं। मतलब ये बालक जो है 7 साल का वो भगवान है। अंधकार में दिमाग में लाइट चालू हो गया, प्रकाश ज्ञान का। तो फिर पश्चाताप हो गया, फिर भाग भाग के नीचे आया। क्या होता है, बड़ा पद प्राप्त करने के बाद बहुत अहंकार उत्पन्न होता है। सो देवेंद्र राजा, देवताओं का राजा बन गया ना, तो ही थॉट ही इज द किंग, ही इज द बॉस। यहां तक कि इतना भ्रम हो गया उसको कि वो भगवान को भी पहचान नहीं पाया, जो भगवान बालक बन के लीला कर रहे हैं उनको पहचान नहीं पाया। भगवान को कुछ ऐसा दिखाना पड़ा उसको ताकि उसके दिमाग में प्रकाश आ जाए, ज्ञान हो जाए उसको। और भगवान ने बड़े अद्भुत तरीके से किया, हाँ किसी को पता नहीं था। उनकी पूजा बंद करने से ही यह वर्षा शुरू हुई थी, मतलब कारण तो वही थे ना, इतने संकट के कारण तो वही है। लेकिन फिर भी उनके पास गए वो, भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो बचाओ, तो बोला चलो मेरे साथ। तो सब लोग चले गए, बोला अभी क्या करोगे, तो बोले कि मैं ये पर्वत को उठाऊंगा। आपका नाम क्या है? अगर तपस्या आपको बोलती है पापा मैं ये पहाड़ को उठाऊंगी, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप बड़े आराम से हंसेंगे, बोला ठीक मेरी प्यारी बेटी। सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि इतना सा बालक है पहाड़ उठाएगा, गोवर्धन कैसे उठाओगे बताओ, कैसे उठाओ, कुछ बताओ ना ऐसे कि कुछ करोगे आप, कैसे यकीन करें आप इतना सी बालक आप इतना बड़ा पहाड़ उठाओगे। तो भगवान उनको ना एक वन में लेके गए, वो वन में एक कदम का पेड़ था। आपने कितने लोगों ने कदम का पेड़ देखा है? इतना दुर्लभ हो गया आजकल, वो सब जगह हुआ करता था पहले। बहुत सुंदर उसको गेंद जैसे फ्लावर आते हैं, और एक फ्लावर भी आएगा ना उस पेड़ पे तो पूरे कॉलोनी को महका देगा वो। मैंने मेरी कॉलोनी में दो लगा दिए हैं, और सावन भादों में पूरी हमारी कॉलोनी महकती है, और कृष्ण की याद भी आती है उससे, कदम के फूल की वजह से। हमारे यहाँ तो इतना सा लगा हुआ है, इतना सा बूंदा है उसका, लेकिन ब्रज में इतने बड़े बूंदे होते हैं जो मेरे जैसे आदमी भी उसको गले लगा सकता नहीं है, इतना बड़े बूंदे होते हैं। वैसा पेड़ भगवान ने ऐसा उखाड़ा अपने हाथ से, और कपड़ा कैसे हम निचोड़ते हैं ऐसा निचोड़ दिया उसको सबके सामने। अभी भी वो पेड़ वहां पर है, इसका नाम है ऐठा कदम्ब, जिसको भगवान ने ऐठ दिया है। अभी वो तो पेड़ जिंदा नहीं है, उसको लोगों ने अच्छी तरह से वार्निश करके उसको कांच के कबड़ में रखा हुआ है, और आज भी आप जाके देख सकते हो। और व्हेन यू सी यू विल अंडरस्टैंड कि somebody has twisted it, it's not somebody has done architectural work in that or whatever carpentry work in that। तो जब वो देखा उन्होंने तो उनको लगा हाँ अभी तो कर सकता है। फिर भगवान ने एक वन है वहां पर, प्रविष्ट वन, अनंत करोड़ों वनों में से छोटा सा वन है, वो वन का नाम प्रविष्ट वन क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान ने वहां पर पृथ्वी में प्रवेश किया, एंटर द अर्थ इन द केव, और वहां जाके उन्होंने नीचे से पर्वत को उठाया, इसलिए उसका नाम प्रविष्ट वन है। और फिर भगवान ने उसको हथेले पे उठाया और फिर उंगली पे धारण किया। तो जैसे समझो अभी आपके बेटे ने उठा ही लिया उसको, तुम लोग ठीक है हमारा बच्चा अद्भुत है बहुत, लेकिन मैया बोल रही है अरे सुबह से भोजन नहीं किया, सुबह से मक्खन नहीं खाया, सुबह से दूध नहीं पिया, और वो भी एक हाथ में उठा के खड़ा है, कितना तकलीफ होता रहेगा। वो कह रहे बेटा हाथ तो बदले करना, ये हाथ को मालिश खड़ा कर दूं मैं, थोड़ा मुंह से मक्खन खिला दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। और बाकी जो बुजुर्ग गोपियां हैं ना उनके उम्र के, यशोदा माई के, तो वो कह रही है देखो अच्छा किया ना मैंने, इतना मेहनत से मैंने वो पद्मगंधा गायों का दूध पिलाया, पद्मगंधा मक्खन खिलाया जिसको कमल की खुशबू आती है, आज काम आया देखो ना, इतना शक्ति से काम आया ना उसको। माता का वात्सल्य है ना, वो अपना प्रेम से सोचेगी। लेकिन ग्वाल बाल सुन रहे हैं उस बात को, तो ग्वाल बाल सुन रहे हैं तो बोल रहे ये मैया लोगों को मालूम नहीं है क्या है राज, क्या है राज। उनको लग रहा है कि उन्होंने माखन खिलाया इसलिए वो शक्तिमान हो गया। उनको क्या पता है जब हम उनको जंगल में गौचारण को लेके जाते थे गाय चराने के लिए, तब ये रोज कुश्ती लड़ाते थे उसको, और कुश्ती लड़ा के उसको हराते थे हम लोग को, एवरी डे वी शुड डिफीट हिम। वो हार हार के आज इतना शक्ति उसके अंदर आ गया कि उसने पहाड़ को उठाया। क्योंकि भगवान उनके साथ में रोज कुश्ती खेलते थे गौचारण में, और भगवान तो सर्वशक्ति का स्रोत है, उनको कौन हरा सकता है। लेकिन वो हारने के लिए आते नीचे अपने भक्तों के साथ में, दी ओनली कम्स टू गेट डिफीटेड, लाइक यू व्हेन यू प्ले विद योर चिल्ड्रन यू गेट डिफीटेड, यू वांट टू गेट डिफीटेड एंड मेक गिव देम हैप्पीनेस। मारामारी भी करेंगे लड़के के साथ लड़के के साथ में, तो आप ऐसे हारते हुए नजर आएंगे, फाइनली आप गिर जाओगे जमीन पर, मैं हार गया, और बेटा बोलेगा पापा मैंने आपको हरा दिया, सी कल भी हरा दिया था आज भी हरा दिया, एंड यू गेट यू फील ग्रेट हैप्पीनेस टू मेक योर चाइल्ड हैप्पी राइट। तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए हमेशा हारते रहते हैं उनसे, होली में भी हारते हैं, कुश्ती में भी हारते हैं, हर चीज में हारते हैं। लेकिन गोपियां भी ये सुन रही थी ग्वाल बाल क्या बोल रहे हैं बड़े गर्व से, और गोपियां कह रही नहीं इनको पता नहीं एक्चुअली राज क्या है, उनको लग रहा है मक्खन खिलाया, इनको लग रहा है कुश्ती खिलाया, लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं है रहस्य की बात क्या है। तो उन्होंने बुलाया ग्वाल वालों को, तुम लोगों को पता नहीं है। तो कह रहे फिर क्या कारण क्या है उसका, आप बताओ, चलो आपको पता है तो आप बताओ। बोले देखो जब वो गोवर्धन को उठा के खड़े ना, कैसे खड़े हैं, ऐसे एक पैर ऐसा है ना, अपने स्टाइल में खड़े हैं, और एक एडिशनल आइटम जो है वो लेफ्ट हैंड में है। देखो किसको देख रहे हो, गौर से देखो उनकी नजर कहां पर है। तो देखा हाँ, नजर राधा रानी की ओर है, राधा रानी उनको देख रही है, वो राधा रानी को देख रहे हैं, और बीच में बलराम जी उनको देखते हैं तो नीचे देखते हैं। बड़े भाई देख रहे हैं ना, बड़े भाई देख रहे हैं कि मैं मेरे गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ तो कैसे लगेगा, कुछ संस्कार भी है ना, मेरे संकोच भी होता है तो नीचे देख रहे हैं। लेकिन आमतौर पर कहाँ देख रहे हैं, राधा रानी को देख रहे हैं, और राधा रानी उनको देख रही है। वो कह रहे हैं ये नजर जो है ना राधा रानी की, तिरछी चितवन कहते हैं उसको, तिरपा कटाक्ष, इसमें से सारी शक्ति आ रही है उनको, और इसके वजह से ये उठा पा रहे हैं, नहीं तो कैसे उठा पाएंगे। अभी ये बात तो अभी हाउ टू प्रूव दिस सेंटेंस, अभी तो मौका नहीं है। बोले बाद में आपको प्रूव करके दिखाएंगे। बीच में बड़े जो आदमी थे ग्वाल बाल गोपाल, वो सोच रहे बेचारा अकेला कितना उठाएगा, कितना तकलीफ होगी उसको, हम सब लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा उसको, एवरीबडी शुड सपोर्ट। तो सबने डंडे लगाए अपने, बहुत हजारों लाखों ग्वाल बाल थे बड़े बड़े, सबने डंडे लगाए, उनको यकीन हुआ कि हमारे डंडे से ही गोवर्धन उठा हुआ है। तो भगवान ने क्या किया, उसको टिल्ट किया थोड़ा सा उसको, ये सब लोग ऐसे ऐसे, उनको भी पता चला कि हमारे डंडे से नहीं, ये तो अपने उंगली में उठा रहे हैं। तो ये सब लीला समाप्त हो गई, इंद्र का पानी समाप्त हो गया, इंद्र परेशान हो गया, फिर उन्होंने बारिश रुकाई, फिर भगवान ने पर्वत को नीचे रखा। फिर भगवान कुछ दिनों बाद में कितना डैमेज हुआ वो देखने के लिए ऐसा इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो उस समय वहाँ पर ग्वालबाल आ जाते हैं और गोपियाँ भी आ जाती हैं, और तब वो ग्वालबाल गोपियों को पूछते हैं अभी बताओ कि आपने कहा था ना उन्होंने नजरों से गिरिराज को उठा के रखा था, उनकी नजरों में इतनी शक्ति है, अभी दिखा दो। तो राधा रानी को लेकर आए, राधा रानी ने सबके आंखों के सामने नीचे देखा, और जब ऊपर देखा तो सारा पहाड़ जो है ना वो आकाश में चला गया, और वैसे देखती रह गई। वो देख रही है पहाड़ आकाश में है, ग्वाल बाल देख रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं, देख लिया ना अभी, नीचे रख दे क्या उसको, नीचे रख दो। तो धीरे नीचे देखा और वापस पेड़ पर्वत जो है वो जमीन पर आ गया। तब सबको पता चला कि राधा रानी के प्रेम भरी चितवन में कितनी शक्ति है, और कृष्ण के अनंत शक्ति का स्रोत कौन है, वह है श्रीमती राधा रानी। ऐसा ये गोवर्धन है। अभी लॉजिकली सोचे जाएंगे तो सब बकवास की बातें हैं, लेकिन भगवान की भक्ति जो है ना वो सब लॉजिक के परे हैं। लॉजिक लेके बैठेंगे तो इधर ही रहेंगे, वापस यही में आएंगे और यही जिएंगे यही मरेंगे दोबारा। लेकिन अध्यात्म जो होता है ना वो सारे लॉजिक और भौतिक नियमों के परे होता है। जैसे आपका जो प्रेम है जिसको आप अनुभव करते हो वो किसी भौतिक लॉ में बैठता है क्या, फिजिकल लॉ में बैठ जाता है क्या? लव इज अ फैकल्टी विच इज बियॉन्ड ऑल मटेरियल रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड न्यूरो साइंस एंड वट एवर जियोलॉजी जियो फिजिक्स यू कैन कॉल एनीथिंग, लव इज ऑलवेज बियॉन्ड दैट बिकॉज लव इज प्योर एंड लव इज स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल बातों को दिमाग से नहीं समझना चाहिए, स्पिरिचुअल बातों को हृदय से समझना चाहिए, और दुनियादारी की जो बातें हैं उनको दिमाग से समझना चाहिए। जस्ट टू रन योर लाइफ सक्सेसफुली इंटेलिजेंटली यू शुड अप्लाई फुल ऑफ योर ब्रेन टू लिव योर लाइफ वेरी इंटेलिजेंटली एंड हैप्पीली एंड गिव योर हार्ट टू द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया का जीवन दिल से जीते हैं और भगवान का विषय में दिमाग लगाते हैं। वही हमारी नींव है, उधर से हम लोग फेल हो जाते हैं भगवान के विषय में। जैसे हमने स्विच ओवर किया ना दुनिया को दिमाग से और भगवान को दिल से करने का शुरू किया, सब चीज अपनी जगह पर आ जाती है, एवरीथिंग बिकम्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। इवन चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, साइंटिस्ट कैन अंडरस्टैंड, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सिंपलिसिटी एट हार्ट। तो वो गोवर्धन में अभी हम जाएंगे, वहां पर उसके अनंत कहानियां हैं। हम लोग 7 बजे तक शाम को बैठेंगे तो भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हरि अनंता हरि कथा अनंता, कहां से शुरू करें कहां से अंत करें, एक विषय का भी, हाँ सब विषय, अब वृंदावन पूरे धाम की नहीं बात कर रहे, एक गोवर्धन की बात कर रहे हैं। तो ये गोवर्धन के सामने गोविंद कुंड है। जब इंद्र ने पश्चाताप करके भगवान का अभिषेक किया पूरे ऐश्वर्य के साथ, हाँ विथ फुल ऑप्युलेंस, फुल ग्लोरी, ऑल द पॉसिबल बेस्ट ऑफ थिंग्स लेके आकर उन्होंने जो अभिषेक कराया, उससे जो भगवान के अभिषेक के बाद में जल इकट्ठा हुआ वो एक सरोवर में जमा हो गया और उसको इंद्र ने नाम दिया गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड अभी वहाँ पर है, उसका बनाया हुआ है, वो भगवान का साक्षात चरणामृत है। भगवान के शरीर से धो, शरीर को धोकर गया हुआ जल जो है उसके अंदर है, और भगवान के चरणों की रज, भगवान के भोजन का अवशेष और भगवान के अभिषेक का जल, ये तीन चीज़ें महाबल कहा गई है। मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअली, मोस्ट स्पिरिचुअली पावरफुल थिंग्स आर थ्री थिंग्स, भगवान का प्रसाद, भगवान का रेमिनेंट्स ऑफ फूड, भगवान के चरणों की रज और भगवान के अभिषेक का जल। इनका संपर्क जिस व्यक्ति को होता है उसका जीवन का उद्धार हो जाता है और पूरा कुंड बना हुआ है उसका। और एक कथा बताता हूँ, वहाँ पर एक सुंदर एक कुंड है जिसका नाम है मानसी गंगा। हाँ अगर आपको याद नहीं रहता आप लिखिए मानसी गंगा, बहुत सुंदर जगह है वृंदा गोवर्धन में। उसकी कथा ऐसी है कि यमुना जी तो इतनी भाग्यवान है कि पूरे वृंदावन का तो अविभाज्य अंग है ना वो, उसके बिना तो वृंदावन के बारे में सोचते नहीं हम लोग, सोच ही सकते नहीं। तो भगवान ने यमुना जी को इतना भाग्य दिया कि जन्म होते ही पहले ही ऑर्डर किया कि मुझे ले चलो, यमुना जी को पार करके गोकुल में ले चलो। और यमुना जी इसी बह रही थी तो भगवान टोकरी में थे, पहले कदम बाहर निकाले उन्होंने और यमुना जी को चरण स्पर्श दिया। लेकिन एक जगह और भी लिखा है कि भगवान कूद पड़े यमुना जी में सीधे और वसुदेव ढूंढने लगे, अरे कहाँ गया मेरा बालक कहाँ गया, सब ढूंढने लगे जल में। जैसे ही भगवान ने जल में कूद छलांग लगाई तुरंत रास्ता बन गया और तुरंत भगवान को छेड़ लिया उन्होंने। इसका मतलब क्या किया, तुरंत अपना अंग संग दिया उसको, ही गेव द कॉन्टैक्ट ऑफ फुल ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी, पूरे दिव्य शरीर का संग दिया उसको और जन्म होते ही यमुना जी को अपना चरणामृत बना लिया। इज इट नॉट ट्रू, यमुना जी उनका चरणामृत बन गया। उसके बाद केवल एक ही बार नहीं कूदे, अपने 12 साल के वृंदावन के जीवन में अनंत बार उसमें कूदे, गोपियों के साथ कूदे, ग्वाल बालों के साथ कूदे, गैया के साथ कूदे, खुद अकेले कूदे और कालिया को मारने के लिए कूदे, अनंत गेंद निकालने के लिए कूदे, क्या क्या नहीं किया यमुना जी के साथ। इतना यमुना जी के किनारे में बंसरी सीखा राधा रानी से, यमुना के किनारे में बैठकर डांस सीखा राधा रानी से, केशव राक्षस को मारा, क्या नहीं किया उन्होंने यमुना जी किनारे, एवरीथिंग मोस्ट ऑफ देम यमुना किनारे किया उन्होंने। तो फिर गंगा जी यमुना जी की बड़ी बहन है, तो उन्होंने छोटी बहन से सिफारिश किया, उनको कहना हमें भी थोड़ा सा कृपा कर दे हमारे ऊपर, गिव मी ऑल्सो सम चांस, थोड़ा बहुत क्यों ना हो, वृंदावन में मुझे भी स्थान मिले और मैं भी उनके साथ में संग करूं, कुछ लीलाओं का अनुभव करूं। तो यमुना जी ने फिर भगवान को ये विनती किया कि मेरी बड़ी बहन, आपके चरणों से निकलने वाली गंगा जी विनती कर रही है कि आपका संग उनको मिल जाए वृंदावन में तो अच्छा रहेगा। तो भगवान ने उसको पूरा करने का विचार किया। लेकिन भगवान कोई भी कहा ऐसा कुछ सिग्नेचर नहीं करते पेपर में, ओके सैंक्शनड लेटर कम ये जगह पे उसको बैठने को बोलो, ऐसा नहीं होता है, वो गवर्नमेंट करती है। पर भगवान हर चीज़ लीला के माध्यम से करते हैं, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली एनेक्टेड बाय द लॉर्ड थ्रू अ लीला, थ्रू अ पास टाइम। तो भगवान ने क्या लीला चाहा, सब ग्वाल बाल एक बार बैठे हुए हैं, नंद बाबा सब लोग बैठे हुए हैं, कोई बड़ा पंडित भक्त आया हुआ है और वो गीता गंगा जी की महिमा पर कथा कर रहे हैं। तो वो सब ग्वाल बाल बैठे हैं, सब औरतें आदमी सब बैठे हुए हैं और कथा सुन रहे हैं, और वो कथाकार बता रहे हैं कि एक बार गरुड़ जी ने अपने भोजन सर्प को पकड़ा और वो सर्प को पकड़कर एक अच्छी जगह जाकर खाऊंगा ऐसे जा रहे थे और बीच में गंगा जी आई, गंगा जी के प्रभाव आया, तो गंगा जी जब के ऊपर वो उड़ रहे थे तो सांप कैसे होता है, इट्स लाइक अ डोरी ना, कुछ हाथ में होता है, कुछ लटकता होता है, तो जब वो नीचे थोड़ा झुक गया तो वो पूछ जो थी सर्प की उसका स्पर्श गंगा जल को हुआ और वो ऐसे लेके उड़ रहा है ना, उसको ऐसे दो हाथ है उसके गरुड़ जी के उड़ रहे हैं, अचानक उसके हाथ में ऐसा ही हो जाता है, इट बिकम्स बिग। तो बोले क्या हो गया, देखते हैं कि वो सर्प जो था वो चतुर्भुज विष्णु दूत का शरीर प्राप्त हो गया उसको। गंगा जी का स्पर्श होते ही उसकी मुक्ति हो गई। क्या मुक्ति का नाम है? सारूप्य मुक्ति। भगवान जैसा रूप हो गया उसका। तो ऐसा पकड़ा था ना उसको, सांप को, डोरी को पकड़ा था, तो वो ऐसा हो गया ना वो। स्पीकर लाइक दिस, ही सॉ इट डाउन, देखा तो चतुर्भुज, मुकुट पहना हुआ, पीताम्बर पहना हुआ, शंकर चक्र पद्म गदा धारण किया हुआ व्यक्ति मेरे हाथ में है। तो समझ जाते हैं कि वो स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो समझ जाते हैं कि ये तो उनकी मुक्ति हो गई। तो खाना खाने का प्लान था उसका, लेकिन उसको अपने कंधे पर लेकर वैकुंठ ले गए वो, और वैकुंठ छोड़ के आए, वैकुंठ विमान बन गए गरुड़ जी और छोड़ के आए। अब ये कथा कौन सुन रहे हैं? सारे ग्वाल बाल सुन रहे हैं और कथाकार बता रहे हैं उनको। तो ये कथा जैसे ही सुनी ना, नंद बाबा से खड़े हो गए तुरंत, अब भी जाना है गंगा जी के पास, नाउ इट सेल्फ वी वॉन्ट टू गो। सब लोग बोल रहे हैं बहुत दूर है यहाँ से अभी, नहीं नहीं, ही वॉज सो इंस्पायर्ड, इतना प्रेरणा मिली गंगा जी का गौरव सुनते हुए, बोला अब भी मुझे स्नान करना है उसमें। तो सब लोग चले चलने लगे। अभी नंद बाबा राजा हैं, सब प्रेम करते हैं उनके ऊपर, उनकी इच्छा है, तो सब लोग चले, वहीं से निकले, कोई बैग वैग भरने की जरूरत नहीं है। राजा ने बोला अभी चलना है। तो श्री कृष्ण भगवान भी थे उस सभा में, छोटे से बालक के रूप में, और श्री कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगा कि वृंदावन छोड़ के मेरे बाबा अभी हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि गंगा जी तो वृंदावन में थी नहीं। तो उन्होंने कहा बाबा आप क्यों जा रहे हैं वृंदावन छोड़ के, वृंदावन में सब कुछ है। बोले गंगा जी कहाँ है, गंगा जी थोड़ी है, गंगा जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन के बाहर जाना पड़ेगा। तो बोले नहीं मुझे अच्छा लग रहा है आप वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। बोले क्या करना है? बोले चलो बाहर जाने के पहले मेरे साथ चलो। अभी वो राजा हैं लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर, बालक है फिर भी सब लोग उनकी इच्छा पूरी करते हैं, सब लोग उनके पीछे चले। कहाँ ले जाएगा अभी, बाल हट्ट है, क्या करें, सुनना तो पड़ेगा ही, अब भी ले चलो। चलो सब चलते हैं उसके पीछे पीछे। तो भगवान उनको गोवर्धन जो है ना बड़े, उसके सेंट्रल इलाके में लेके जाते हैं उनको, एकदम सेंटर में लेके जाते और खड़े हो जाते हैं ऐसे, और हृदय में गंगा जी को आह्वान करते हैं, इन्वाइट्स प्लीज कम। तो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबके आंखों के सामने भगवान के हृदय से गंगा देवी प्रकट होती है, और ऐसे प्रकट होकर सामने ऐसे खड़ी हो जाती है। मगरमच्छ का उसका है ना, क्रोकोडाइल इज हर व्हीकल, तो वो मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई चार भुजा वाली गंगा देवी पूरे ऐश्वर्य के साथ में भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए बैठ कर प्रकट हो जाती है। सबको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे हमारा कन्हैया, हमारा गोपाल देखो कितना महान है, उसके हृदय से गंगा प्रकट हो गई, पहचानते हुए कि गंगा जी है, सब प्रणाम कर रहे हैं गंगा जी को। ऊपर से और आश्चर्य उनको हो गया, वो क्या कह रही है, गंगा जी हे प्रभु मेरे लिए क्या आ गया है। अभी आप सोच सकते हैं, अरे जिनकी जल में हम लोग स्नान करने की तमन्ना कर रहे थे, वो मेरे बेटे को प्रभु करके आज्ञा मांग रही है। और तीसरा आश्चर्य देखिए, जिनको प्रभु बोलकर आज्ञा मांग रही है, वो बच्चा उनको आज्ञा दे रहा है, हे गंगा देवी आपका जल यहां पर प्रकट करो, मुझे यहां पर स्नान करना है। तो सबके आंखों के सामने चौथा आश्चर्य ऑर्डर दिया बच्चे ने, तीसरा आश्चर्य, चौथा आश्चर्य, सबके आंखों के सामने गंगा जी ने अपना जल वहां पर समुद्र जैसे विशाल सरोवर में प्रकट कर दिया, बीच गोवर्धन में, ऑलमोस्ट लाइक अ ओशन ऐसा सरोवर तैयार हो गया। और गंगा देवी ने भगवान की स्तुति की, बहुत प्रार्थना की, और फिर भगवान से आज्ञा ली, और उनके सामने वो अंतर्धान हो गई। और क्या बचा वहां पर, एक विशाल कुंड, क्या उसका नाम पड़ा, मानसी गंगा, भगवान के मन से प्रकट हो गई वो। फिर कन्हैया ने बाबा को देखा, बाबा जाना है बाहर कि यही स्नान करना है, तुरंत कुछ बोले भी नहीं, तुरंत कपड़े उतार के स्नान किया, वो जैसे उतरे सब लोग उतरे, सबने स्नान किया और हरिद्वार जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इस तरह से भगवान ने गंगा जी को वृंदावन धाम में स्थान दिया। अभी स्थान दिया तो केवल एक काम करने में स्थान दिया क्या, बाबा की इच्छा थी स्नान करने की तो कर दिया प्रकट, अभी आगे कुछ नहीं, नहीं, उसी सरोवर को वो जो आज भी गोवर्धन के अंदर ब्रज में जितने भी कुंड है सबसे विशाल कुंड वो है, इतना विशाल है, उसके अलग अलग शेप्स है, बहुत सुंदर, बहुत दीर्घ विस्तारित कुंड है वो। तो वो भगवान ने फिर आगे नौका विहार करने के लिए उसका उपयोग किया, यानी बोटिंग, बोटिंग करने के लिए। अनंत भगवान की लीलाएं हैं, बोटिंग की लीलाएं जो भगवान ने वहां पर संपन्न की, उसमें से आपको मैं एक बताऊंगा। हरे कृष्णा। तो आप जानते हैं कि वो लोकेशन जो है ना वृंदावन का, वो ऐसा है कि इधर मथुरा है दक्षिण की ओर, और उसके बीच में बाद में वृंदावन आता है, उसके पहले गोकुल आता है, उसके बाद में वृंदावन आता है, और उसके आगे गोवर्धन आता है, और उसके आगे जाएंगे तो नंदगांव, बरसाना, काम्यवन, उत्तर की दिशा में आप जा रहे हो। तो बरसाना उत्तर दिशा में, बीच में गोवर्धन है, और अगर मथुरा जाना है तो वो बीच में आएंगे गोवर्धन में, फिर बोट लेंगे और बोट से पार करेंगे और फिर आगे मथुरा जाएंगे। तो गोपियाँ हमेशा अपना मटका वगैरह लेके इन्हें दही बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी, दूध दही माखन और घी और बाकी सारे पदार्थ जो हैं वो लेकर मटके में भरते हुए वो आती थी और यहाँ बोट करके क्रॉस करके फिर आगे जाती थी। उस दिन जब सब लोग आए, राधा रानी और सब गोपियाँ आ गई, तो वहाँ पर कोई नाविक नहीं था, नो बोटमैन। इतने बड़े विशाल में हर जगह देखा, कोई भी नहीं मिला। तो परेशान हो गए, अभी क्या करेंगे, इसको कैसे बेचेंगे। तो उनको एक बुढ़ा नाविक मिला, ऐसा ओल्ड मैन, और बोट भी उससे भी अधिक बुढ़ी थी जीर्ण एकदम, ऑल डायलैपरेटेड कंडीशन। तो क्या करेंगे अभी, तो वो सोया हुआ ऐसे, बोले बाबा चलना है। हाँ चलेंगे, बोले थक गया हूँ बहुत, लेकिन थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। नहीं नहीं हमारे लिए जल्दी है, बहुत देर हो गई, अभी शाम तक लौटना भी है, अब चलो। तो फिर बहुत उकसाते हैं उसको, तो बुढ़ा तैयार हो जाता है। फिर वो उनके उस जमाने में ऐसा नहीं था कितने रुपए लेंगे, 50 रुपए के 100 रुपए, ऐसा नहीं था। एक आधा मटका दही, एक मटका दही, एक मटका दूध, एक ऐसे वो बार्टरिंग करते थे। तो उन्होंने तय किया कि इसको एक मटका जो दूध माखन का है वो उसको दे देंगे उसका किराया। फिर तैयार हो गया वो, सब लोग अपना अपना मटका लेकर सब बैठ गए बोट में, और बोट जो मैन चालू हो गया ड्राइविंग अक्रॉस गया, वो एकदम ना जल के बीच में गया, जाना ही है उसको पार करने के लिए। और पार करके बीच में जब आया, बीच में जब पहुंचा, पार नहीं किया, बीच में जब पहुंचा तो कहता है नाव में पानी आ रहा है, होल देखा, होल देखा, होल दिख रहा है, देखो पानी आ रहा है वहां से। बोले ऐसे क्यों हो रहा है, बोले नाव का वजन ज्यादा हो गया है, मोर देन ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेट। तो अभी क्या करेंगे, अभी आपको बताना है क्या करना है, पहले क्यों नहीं बताया नाव में होल है। बोले आप इतना डेस्परेट थे, मैं क्या करूं, आपने जाना ही था, मैंने क्या करूं, अभी क्या करना बताओ। तो कहता है ये सारे मटके जो है ना, सॉरी एक एक चीज भूल गया मैं, उसके पहले बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, बहुत बहुत भूख लग रही है, आपका जो किराया है ना वो दे दो मुझे पहले ही, तो थोड़ा सा मुझे शक्ति आ जाएगी, थोड़ा सा तो मैं ठीक रहूँगा। तो कहता है ऐसा नहीं होता है, वो वहाँ पहुँचने के बाद देना होता है। देखो अभी मुझे अगर भूख लगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, अगर मैं कमज़ोर हो जाऊँगा तो चला नहीं पाऊँगा, तो आप पार कैसे हो जाएंगे, आप सोच लो, या तो यही बैठो या तो मुझे मक्खन खिलाओ। तो मजबूर हो जाते बेचारे, वो दे देते हैं उसको मटका, पूरा मटका मक्खन खा जाता है, पेट भरता है उसका, और वो चालू करता है, वापस रोक देता है, बोलता है इतना अच्छा मक्खन था, थोड़ा खाना था लेकिन मैंने पूरा ही खा लिया, अब मुझे नींद आ रही है बहुत, पेट भर गया मेरा पूरा, क्या बोलते हैं उसे मेडिकल लैंग्वेज में, हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर फूड। तो बोलते एक तमाचा मारेंगे आपको, कब से आप नाटक कर रहे हो, चलो अभी आप। तो नहीं नहीं मुझे तो नींद आ रही है, तो ठीक है थोड़ा सा विश्राम करो। तो अभी देखो बीच में सरोवर के बीच में एक ही नाव है, उसमें नाभिक सो रहा है, सब लड़कियां बैठी हुई है। ऊपर से क्या बोलता है, मुझे ना जब मैं सोता हूँ ना तो हाथ और पैर दबाने की आदत है, तो आप में से कोई मेरा पैर दबाएगा, हाथ दबाएगा, तो मैं जरा जल्दी विश्रांति समाप्त हो जाएगी मेरी, द रेस्ट विल बी ओवर वेरी फास्ट। तो बोले एक तमाचा मारेंगे आपको, घर जाकर बीवी से पैर दबाओ। तो फिर वो उठ जाता है, फिर वापस चालू करता है, उसके बाद में बोलता है, फिर रुक जाता है, बोलता है कि देखो अभी लीकिंग हो रहा है। तो क्यों लीकिंग हो रहा है, बोले आपने इतने सारे घड़े लेकर आए ना, उसका वजन ज़्यादा हो गया है, तो अभी क्या करना है, अगर बचना है तो ये सारे घड़े आपको पानी में फेंकने पड़ेंगे, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर लाइफ। बचेंगे तो और भी दही बेचेंगे, लेकिन बचेंगे नहीं तो दही कैसे बेचेंगे, इसलिए आज आपको सारे मटके डालने पड़ेंगे। देखो देखो पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है। तो बिचारी गोपियाँ जिस काम के लिए नदी पार कर रही थी, वो काम के जो साधन थे मटके, वो सब बेचारे बड़े ही गहरे हृदय की भावना से सब नदी में फेंक देते, और फिर थोड़ा सा बोट ऊपर आ जाता है, फिर वापस चालू हो जाता है, फिर रुक जाता है थोड़ी देर के बाद में, फिर बोलता है अभी क्या हो गया, चलो जल्दी, कितनी बार रुकाओगे, एक बार खाने के लिए, एक बार सोने के लिए, एक बार इसके लिए, एक बार उसके लिए, चलो जल्दी अभी। बोलता है अभी भी भारी हो रही वेट गाड़ी, अभी क्या करना, अभी तो मटके तो फेंक दिए। बोलते हैं आप लोग बहुत सारे गहने पहनकर बैठे हुए हैं इसके अंदर, सो मेनी ऑर्नामेंट्स, वजन होता है कि ना उसके अंदर, आप गिनते ना उसको, 10 तोला का, 50 तोला का, 100 तोला का, वो तो गोपियां हैं, इनके हाथ में तो लदे हुए थे वो अलंकारों से, कान में, सर से लेकर पांव तक। बोले इसका वजन है, उतारना पड़ेगा आपको, अभी क्या करेंगे, पानी भरते भरते ऊपर आ रहा है, तो व्हाट टू डू। एक एक करके सब उतारा, इधर का उतारा, इधर का उतारा, सब उतारा, देखा ऐसे बड़े प्रेम से, ओ डाल दिया उसको सब ने, राधा रानी ने सबने अपने गहने उतार दिए, डाल दिया उसके अंदर, फिर बोट चालू हो गई वापस। उसके बाद में बोलता है अभी भी पानी ऊपर आ रहा है और अभी भी बोट भारी है। बोला अभी क्या रखे, अभी सब तो दे दिया। बोले कपड़े उतार को फेंकना पड़ेगा, बहुत कपड़े भी बहुत भारी है। बोले दो तमाचा लगाएंगे आपको, चलो अभी चुपचाप, क्योंकि ही इज लाइक स्टेपिंग वन स्टेप अहेड ऑफ ईच अदर। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आता है, तो फिर चुपचाप हो जाते, फिर आगे चला है। इतना ही होने के बाद में अचानक ना आंधी तूफान आ जाता है, एकदम बादल छा जाते हैं, एकदम अंधेरा हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, भनघोर आवाज आने लगती है और बहुत भयंकर वर्षा होने लगती है। तो जब वर्षा होने लगती है ना, तो राधा रानी बहुत डरती है, और जैसे ही डरती है तो और एक खड़ाड़ करके बिजली कड़कती है, तो उस बिजली की आवाज से वो डर कर जाकर वो नाभि को गले लगाती है। सडनली, इट्स नॉट इंटेंशनल, जस्ट लाइक जो भी बाजू में उसको जाके गले लगाती है। जैसे ही गले लगाती है, समझ जाती है तो कन्हैया है, ही इज कृष्णा। वो फेटे के अंदर छुपाया मोर पंख दिखाई पड़ता है उसको, फिर नीचे देखते हैं तो कमर में छुपा हुआ बांसुरी भी दिखाई पड़ती है। तो सब लोग गोपियां उस पर छपक पड़ते हैं, उसका फेटा बेटा उतार देती है, तो देखते तो कृष्ण है, हमारा कन्हैया है। तो बोल रहे आज तुमने ऐसा क्यों किया, कितना टेंशन दिया हमको, कितना हम लोग कितने त्रस्त हो गए थे, क्या होगा हमारा पानी के बीच में। तो कहते आज हमारा दिल था कि मानसिक गंगा के विशाल जलाशय में आपके साथ में नौका विहार करेंगे। तो फिर भगवान ने वहां पर रात भर, क्योंकि संध्या का समय तो हो ही रहा था, दिन तो ढल ही रहा था, संध्या के समय पर वर्षा हुई। तो ये सब जब डराने के लिए हुआ, अचानक वर्षा बंद हो गई, बहुत सुंदर समय पैदा हो गया, सुंदर खुशबू वाली हवा बहने लगी, और फिर सब लोगों ने मिलकर नौका विहार किया रात तक, रात भर। यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती है, उसके अंदर और भी एक हिंट वाली, क्या कहते हैं उस रहस्य वाली बात है। आपने सुना है कभी कि भगवान ने जब रास नृत्य किया तो कितने समय के लिए किया, एनी आइडिया? एक रात तक किया ना, शरद पूर्णिमा की रात में जब चांद आया, पूर्ण चंद्र, तब को देखकर प्रभावित हो गए, बीच रात में गोपियों को बुलाया और आपने सुना कि रात भर नृत्य किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने उस एक रात में ब्रह्मा जी की एक रात का समय समेट लिया, मतलब एक्चुअली कृष्ण डांस्ड विद गोपीज फॉर 432 crores ऑफ ईयर्स, जो ब्रह्मा की रात होती है, ब्रह्मा की एक रात 432 crore साल की होती है एक रात। तो भगवान ने नौका विहार भी 432 crore साल तक किया, लेकिन इस एक दुनिया की रात में 12 घंटे में उसको एडजस्ट कर लिया उन्होंने। वो केवल वही कर सकते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ के दुनिया के कैलेंडर में एक ही तिथि बदली, जब रात समाप्त हो गई और गोपियाँ घर चली गई, तो ओनली वन तिथि हैज चेंज्ड, बट एक्चुअल समय जो गोपियों ने अनुभव किया वो ब्रह्मा जी की एक रात का समय अनुभव किया उन्होंने। ऐसे भगवान ने वहाँ पर अनंत नौका विहार किए हैं। तो ऐसा है मानसिक गंगा, मानसिक गंगा के केवल स्मरण मात्र से, उसकी कथा सुनने से, उसका स्पर्श करने से, आचमन करने से, स्नान करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ बैठकर भी आप श्रवण कर रहे हैं प्रेम से मानसिक गंगा की कथा, वो भी भगवत का धाम प्राप्त करने के लिए काफ़ी है। वहीं से अपने भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। यू कैन बिगिन योर स्पिरिचुअल लाइफ जस्ट बाय हियरिंग विथ फेथ एंड लव एंड डिवोशन द ब्यूटिफुल पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड हरे कृष्णा। और कई स्थान बनाए गए हैं और कई अनंत स्थान वहाँ पर गोवर्धन में भी है। यहाँ पर एक राधा कुंड श्याम कुंड बनाया हुआ है, गोविंद कुंड उस तरफ है और इस तरफ राधा कुंड श्याम कुंड है। वहीं पर हमारी गोवर्धन शिला भी रखी गई थी, अभी बरसात की वजह से उसको मंदिर के नीचे अंदर रखी गई है। तो राधा कुंड श्याम कुंड के संक्षेप में कथा ऐसी है कि भगवान जब एक बार संध्या के समय बांसुरी बजाकर गोपियों को रास करने के लिए बुलाने वाले थे तो अचानक भयंकर बैल आ गया, उधर राक्षस बन के, अरिष्टासुर कहते हैं उसको, अरिष्टासुर राक्षस वहां पर आ गया कंस के आदेश के अनुसार। और जब वो आया ना वहां पर, उसका वर्णन किया है कि कैसे आया वो, जैसे आया तभी उसके पैर, चार पैर जब पृथ्वी पर आ रहे थे ऐसे धधकते हुए, तो वो पृथ्वी पर गड्ढे बन रहे थे और पृथ्वी के अंदर जो जलाशय थे ना, वो स्रोत, द सोर्सेस ऑफ वाटर, दे वर कमिंग आउट लाइक स्प्रिंकल्स, ऐसे तूफान मचाते हुए जितने जितने कदम रखे उसने ब्रज में, मथुरा से आते तक सब जगह जल पैदा किया उसने, और साथ में इतना टट्टी और पेशाब किया जानबूझ के कि टट्टियों के पर्वत बने और पेशाब के रिवर्स बने। उसकी वो पूंछ जब आकाश में जा रही थी तो बादलों को यहाँ से वहाँ फेंक रही थी वो, और जो भागते हुए आ रहा था उसकी सांस जो फूल रही थी, वो सांस जैसे तूफान आता हो, हरिकेन उस तरह से वो सांस आ रही है। जब वो आ रहा था तो कई गोपियों के गर्भपात हो गए जो गर्भवती थी, इतना आतंक फैलाया उसने। आजकल का आतंक कैसा है, छुप के आना है, एक बैग रखना है और भाग जाना है, उसका ठॉक हो जाएगा, फिर एक 200-1500 आदमी, 15-20 आदमी जख्मी हो जाएंगे, भाग जाएंगे इधर उधर। लेकिन कैन समबडी कंपेयर विद दिस आतंक, एक बैल आ रहा है, उसने पूरा हर प्रकार से ऐसा आतंक बना दिया है कि क्या कहें, उसका हाहाकार मचा दिया पूरा। तो यहाँ मुरली बजने वाली थी और गोपियाँ आने वाली थी, उसमें तो वो राक्षस आ गया, तो भगवान ने मुरली फिर अंदर रखी, वो स्टैंड्स ले लिया तुरंत। तो वो जो बैल जो है वो समझ गया, उसको बताया गया था ना कैसे पहचानना है, किसको मारना है। वो नीले रंग का बालक है जो मोर पंख धारण करता है, जो पीली धोती पहनता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया ना कैसे टारगेट को पकड़ना है। तो मिला उनको उधर, तो दोनों एक सामने आ गए, तो उसने भगवान पर बहुत भयंकर प्रहार किया। अभी उसका लंबा वर्णन है, वो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत घनघोर युद्ध हुआ उनका और भगवान का। आखिर छोटे से भगवान ने उनको पिछले दो पैरों से उठाया और गोल 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 घुमाया और जमीन पर पटक दिया उनको। फिर भी वो तिलमिला उठा और वापस उठा और बहुत क्रोध से भगवान पर आक्रमण किया। इस समय भगवान ने उसको गोल गोल घुमा के आकाश में फेंक दिया और फिर जमीन पर आके जब गिरा, मर गया ऑन द स्पॉट। उसके बाद सब लोग, भगवान को बड़ा आनंद हो गया कि मैंने देखो सब गोपियां तो आ ही रही थी, ग्वाल बाल भी आ ही रहे थे, उसके बीच में राक्षस आया और मैंने उसका वध कर दिया, तो बड़ा अच्छा लगा उनको। और खुद गए बड़े गर्व के साथ गोपियों के सामने कि गोपियां भी वाह वाह करेंगी, शाबाश करेंगी। गोपियां कहते आपसे हम बात नहीं करेंगे। अभी वो आश्चर्य हुआ ना, अभी इतना अच्छा काम किया, आपको राक्षस से बचाया और आप कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, क्यों क्या बात हुई, मैंने राक्षस का वध किया, आपको संकट से बचाया। तो कहते आपने धर्म का प्रतीक जो बैल है उसका वध किया है, यू हैव किल्ड द एम्ब्लेम ऑफ धर्मा, बहुत बड़ा पाप किया आपने, और हमारा पूरा जीवन गाय और बैल पर निर्भर है, बैल हमारा पिता है और गाय हमारी माता है, तो आपने बैल का वध किया है, धर्म का नाश करने का कार्य किया है, हम आपसे बात नहीं कर सकते, वी वर्शिप बुल एंड काउज। तो कहते वो राक्षस था भैया, वो राक्षस था, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, हम कुछ नहीं जानते, जब तक आप इस बैल को मारने के पाप से मुक्त नहीं होते तब तक आपसे हम बात नहीं करेंगे। तो बोले अभी आप ही बताओ, आपने ही वो अपराध ढूंढ के निकाला है मेरा, अभी आप ही उसका उपाय बताओ, क्या करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम आपसे बात के बिना किए बिना रह नहीं सकते हैं। कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी भगवान, है ना। एक गाय संभालने वाली लड़की बोल रही है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे हु केयर्स, गेट लॉस्ट। लेकिन वो गोपियां भगवान के लिए ऐसी नहीं है, वो सर्वस्व है उनकी, वो अगर कह रहे हैं कि बात नहीं करेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा आघात है वो, सब बिगेस्ट थ्रेट इन लाइफ, दैट गोपीज विल नॉट टॉक टू मी। तो अभी बता रही गोपियां, राधा रानी बता रही है, लेकिन इस विश्व में, वृंदावन में नहीं, इस विश्व में जितने पवित्र स्थान हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र पर्वत हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, जितनी नदियां हैं, सब में आपको स्नान करना पड़ेगा, तब विश्व यात्रा करेंगे आप पूरी, पवित्र यात्रा, तीर्थ यात्रा, तब आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने तुरंत स्माइल दिया उनको, मतलब उनको क्या लगा अब ये जाएंगे ब्रज छोड़ के सब जगह ढूंढ के स्नान करके आ जाएंगे। भगवान ने कहा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मन में स्मरण किया और सारे धामों को, तीर्थों को, नदियों को, कुंडों को, सरोवरों को वहां बुला लिया, क्योंकि सारे नदी धाम कुंड नदी जितने भी है वो सब व्यक्ति हैं, दे आर पीपल, दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे आर पर्सोनिफाइड माउंटेन और पर्सोनिफाइड रिवर, बट दे आर पीपल, सब देवी देवता है। वो खड़े हो गए हाथ जोड़ के, यस भगवान क्या करना है। तो जहां पर एक जगह पर अरिष्टासुर का पैर का एक गड्ढा बना हुआ था, उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया, बोला इधर आपके सारा जल डाल दो और जितने पर्वत हैं वो सब प्रवेश कर दो उसके अंदर, ऑल होली प्लेसेस एंटर, और जितनी जल रूपी है अपना जल भर दो उसके अंदर। कहते हैं 68,000 तीर्थ वहां पर प्रवेश कर गए और वो कुंड भर गया। सब राधा रानी देख रही हैं, सब गोपियां भी देख रही हैं, सबके आंखों के सामने सब लोग प्रवेश कर दिए वहां पर। फिर कृष्ण भगवान उतरे, उन्होंने स्नान किया, ग्वाल बाल उतरे, सबने स्नान किया और फिर आ गए स्वच्छ होकर। क्योंकि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमने सबको यही बुला लिया है। तो वो जो कुंड बना उसका नाम बना श्याम कुंड। यहाँ पर भगवान ने सभी तीर्थों को आह्वान करके विराजमान कर दिया, स्नान किया और आ गए गोपियों के सामने। और भगवान ने कहा अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हो गया, क्यों? क्योंकि आपने उस राक्षस का पक्ष लेकर हमसे विवाद किया है। यू हैव फॉट विथ मी टेकिंग द साइड ऑफ अ डीमन, तो आपको भी अपराध लग गया है। तो आपको भी अगर मुक्त होना है तो आपको सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा। और बाद में बोलते हैं एक क्लॉज भी है उसके नीचे, अगर आपको इच्छा है तो हमारे इसमें भी स्नान कर सकते हैं। राधा रानी कहते नहीं स्नान करेंगे, क्योंकि आपके कुंड में अरिष्टासुर को मारने का पाप आपने छोड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग उसमें स्नान नहीं कर सकते, अपना कुंड अलग से बनाएंगे, पवित्र कुंड बनाएंगे फिर स्नान करेंगे उसको। तो सारी गोपियां वहां से लेकर मानसी गंगा तक लाइन लगाती हैं, एक एक मटका लेकर मानसी गंगा का पानी लेकर सब लोग ट्रांसफर करते 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 बहुत, अभी भी आज की तारीख में भी वो कम से कम 3 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। तो सबके पसीना आने लगता है, पूरा मटका ट्रांसफर कर रहे हैं और इतना सा जल भी पैदा नहीं हो रहा है। उसके पहले क्या करते हैं, कंकण अपने तोड़ते हैं और कंकण से गड्ढा बनाते हैं उसके बाजू में जहाँ पर भगवान ने एक श्याम कुंड बनाया है। और इतना मेहनत करने के बाद जरा सा पानी भी जमा नहीं हो रहा है। और जितने लोग आए थे ना भगवान के आह्वान करने से, वो वहीं खड़े हैं वेट कर रहे हैं, कभी ना कभी सेवा मिलेगी तो पानी भर देंगे। सब लोग देख रहे हैं उनको और कृष्ण भगवान बोलते हैं अरे क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, इनको सेवा दो। नहीं नहीं हम करेंगे, हमारे आप हमको आपकी मदद नहीं चाहिए। तो भगवान फिर एक को इशारा करते नज़र से ही, चीफ देवता को जो तीर्थों का मेन है उसको बुलाते हैं। तो वो आता है और राधा रानी को बोलते हैं माता जी प्लीज़ हमको सेवा दीजिए, इतना क्यों कष्ट कर रहे हैं, हम सब लोग आपको सेवा करने के लिए आतुर हैं, वी आर वेरी ईगर टू सर्व यू, गिव अस अ चांस टू सर्व, वी नो यू कैन बिल्ड दिस सरोवर, बट हम आपसे विनती करते हैं हमें सेवा दीजिए। तो फिर राधा रानी दयालु करुणामयी राधा रानी जो है वो हाँ कह देती है। तो सारे जो है वो उसमें प्रवेश कर देते हैं, एक क्षण में भर जाता है पूरा। उसी क्षण जब ये भर जाता है श्याम कुंड के नीचे से बांध फूटता है और सारा जल इसमें प्रवेश करता है। और राधा रानी देखती है कि श्याम कुंड मिक्स हो गया उसके साथ। फिर राधा रानी सब लोग उसमें स्नान करते हैं और जब वो कुंड बनता है तो कृष्ण भगवान बहुत सुंदर वाणी में बोलने लगते हैं। वो कहते हैं ये जो कुंड है इसको राधा कुंड के नाम से जाना जाएगा, नंबर वन। दूसरा कहते हैं कि ये कुंड जो है वो जल नहीं है, ये राधा रानी का साक्षात प्रेम है। इट्स नॉट वाटर, इट्स लव ऑफ राधा रानी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और ये केवल राधा रानी का प्रेम नहीं है, स्वयं राधा रानी का ही स्वरूप है ये, राधा कुंड स्वयं राधा रानी है, ये बता दिया उन्होंने। और वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करेगा वो व्यक्ति राधा रानी मुझे जितनी प्रिय है उतना प्रिय हो जाएगा, और वो व्यक्ति को वो प्रेम प्राप्त होगा जो राधा रानी को मेरे प्रति है। दो डिफरेंट चीजें हैं, एक कृष्ण को प्रिय होने की बात है और एक राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो प्राप्त होने की बात है। ऐसा वरदान भगवान ने दे दिया, जितना अनंत प्रेम राधा रानी के मन में कृष्ण के लिए है वही प्रेम उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा जो राधा कुंड में स्नान करेगा। इसलिए राधा कुंड को आगे जाकर आचार्य और संत लोग वर्णन करते हैं कि पूरे विश्व का, पूरे निर्माण का, पूरे सृष्टि का सबसे सर्वोच्च पवित्र स्थान है वो, उससे ऊपर कोई पवित्र स्थान नहीं है। द हाइएस्ट ऑफ ऑल होली प्लेसेस इज राधा कुंड एंड श्याम कुंड। फिर उसमें भगवान ने नौका विहार किया है, उसमें भगवान ने पाशा खेला यानी कि चेस चौसर का खेल खेला है, बहुत सारी लीलाएं उसके अंदर हुई है। और राधा कुंड इन इटसेल्फ इज लाइक ओशन ऑफ पास टाइम्स, एक पूरा दिन भी राधा कुंड की लीला करेंगे तो समाप्त नहीं होगी लीलाएं, इतना सुंदर स्थान है। और वो राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन की आंखें इस रूप में जम उसको माना जाता है। गोवर्धन एक मोर के आकार में है, मोर के रूप में है, उसकी दो आंखें जो है वो राधा कुंड श्याम कुंड है, उनका कंठ जो है वो दान घाटी है, उनकी पूंछ जो है वो पूंछनी का लौठा उस तरफ है पश्चिम की ओर। वृंदावन धाम बहुत आनंद वाला है, फुल ऑफ
ट्रांसेंडेंटल ब्लिसफुल पास्ट टाइम्स। हरे कृष्णा, श्री गिरिराज गोवर्धन की।